ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। दोलखा में हिमस्खलन की चपेट में 3 लोगों की हुई मौत, 4 लापता। सरकार ने जेनजेड प्रदर्शन के दौरान मारे गए 45 नागरिकों को किया शहीद घोषित। सबको महसूस होने के हिसाब से भ्रष्टाचार नियंत्रण और प्रभावकारी सेवा प्रवाह करने का सचिवों को प्रधानमंत्री कार्की ने किया निर्देश। सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए राष्ट्रपति पोर्टल पहुंचे कतर की राजधानी दोहा। और अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। दोलखा की गौरीशंकर गांवपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित गौरीशंकर और रोलवा लिंग हिमश्रृंखला अंतर्गत आरोहण के लिए गए पर्यटकों में से एक विदेशी और 2 नेपाली सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी पुलिस के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। हिमस्खलन में पड़े हुए अन्य 4 लोग लापता हैं और उनकी खोज की जा रही है। ये बात प्रमुख जिलाधिकारी नारायण प्रसाद रिसाल ने बताई। आरोहण के लिए गए विदेशी और स्वदेशी पथ प्रदर्शकों समेत 12 लोगों का समूह आज सुबह यलुंगरी के पास हिमस्खलन की चपेट में पड़े थे। लापता लोगों की खोज और उद्धार के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण घटनास्थल पर पहुंच नहीं सका है। इसी बीच 5 लोग संपर्क में आए हैं, ये जानकारी भी पुलिस ने दी। सरकार ने जेनजेड प्रदर्शन के दौरान मारे गए 45 लोगों को शहीद घोषित किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने यह निर्णय किया। बैठक ने जेनजेड प्रदर्शन के दौरान काठमांडू समेत देश के विभिन्न स्थानों में मारे गए 45 नागरिकों को शहीद घोषित करने का निर्णय किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने दी। मंत्रिपरिषद ने आपदाग्रस्त जिला घोषित इलाम के प्रभावित स्थानीय तहों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक 5,30,00,000 रूपये आपदा व्यवस्थापन कोष में जमा करने का निर्णय किया है। इसके अलावा बैठक ने कई अन्य निर्णय किए हैं, जिनमें वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण का सदस्य सह न्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझा को बनाने और जबरन गुम किए गए व्यक्ति संबंधी छानबीन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप कोष नियमावली 2082 स्वीकृत करने लगाए निर्णय शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सबको महसूस होने के हिसाब से भ्रष्टाचार नियंत्रण और प्रभावकारी सेवा प्रवाह करने का सचिवों को निर्देश किया है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में सचिवों के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने ऐसा निर्देश किया। उन्होंने जेनजेड आंदोलन की भावना के मुताबिक भ्रष्टाचार नियंत्रण, सुशासन और प्रभावकारी सेवा प्रवाह में आम नागरिक को महसूस होने के हिसाब से सुधार लाने के लिए सभी मंत्रालयों को ब्लूप्रिंट तैयार कर क्रियान्वित करने का निर्देश किया। साथ ही प्रधानमंत्री कार्की ने सार्वजनिक खर्च में मितव्ययिता लाने, निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाकर औद्योगिक वातावरण में सुधार लाने के लिए आवश्यक सहजीकरण और सहकार्य करने लगायत 14 सूत्रीय निर्देश किए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने डिवीजन वन कार्यालय इलाम के तत्कालीन और हाल में भोजपुर में कार्यरत डिवीजनल वन अधिकृत दान बहादुर श्रेष्ठ के विरुद्ध गैरकानूनी संपत्ति अर्जन के अभियोग में विशेष अदालत काठमांडू में केस दर्ज किया है। आयोग के मुताबिक श्रेष्ठ की विक्रम संवत 2048 आषाढ़ 26 गते से 2080 फागुन 16 गते तक की अवधि में उनके परिजनों समेत वैधानिक आमदनी और प्रमाणित खर्च की तुलना में 1,43,00,000 से अधिक रुपए बराबर की संपत्ति का स्रोत नहीं दिख सका है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हैं। कल से कार्तिक 20 गते तक वहां आयोजित होने वाले सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में सहभागी होने के लिए राष्ट्रपति पौडेल आज दोहा पहुंचे। राष्ट्रपति पौडेल कतार के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए सम्मेलन में सहभागी होने के लिए वहां गए हैं। वे सम्मेलन के मुख्य सत्र को कार्तिक 18 गते को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव को सौंपी गई है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोयराला द्वारा जारी बयान के जरिए साझा की गई है। रसुआगढ़ी स्थित नेपाल और चीन को जोड़ने वाला मितेरी पुल निर्माण एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। चीनी अधिकारियों के अनुसार निर्माणाधीन मितेरी पुल का निर्माण एक महीने के भीतर पूरा होगा। पिछले आषाढ़ में लेंदेखोला में आई बाढ़ द्वारा पुल बहाल दिए जाने के बाद दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई थी, जिसके बाद चीनी पक्ष ने ये पुल निर्माण शुरू किया था। रसुआ जिले के प्रमुख जिला अधिकारी राजेश पंथी ने चीनी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद बताया कि एक महीने के भीतर पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा और फिर बैठक करके संचालन की तिथि तय की जाएगी। मितेरी पुल के बह जाने के साथ ही इस नाके से होने वाले आयात निर्यात के ठप हो जाने से कम 14-15 अरब राजस्व की हानि हुई है। ये जानकारी प्रमुख भंसार अधिकृत तुलसी प्रसाद भट्टाराय ने दी। पिछले आर्थिक वर्ष में इसी अवधि में 14 अरब रुपए का भंसार शुल्क जमा हुआ था। झापा के भद्रपुर से लेकर सप्तरी की बलान नहर तक की हुलाकी सड़क का 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की हुलाकी सड़क खंड की 375 किलोमीटर सड़क का 75% काम पूरा होने से सीमावर्ती क्षेत्र के बाजार और गांव बस्तियां जुड़ रहे हैं, जिससे चहल पहल बढ़ गई है। पासपोर्ट विभाग ने प्रतिदिन 1000 पासपोर्ट वितरित करने की बात स्पष्ट की है। विभाग ने आज से प्रतिदिन सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर पासपोर्ट उपलब्ध कराने की सूचना दी है। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की आपूर्ति के लिए विभाग ने पिछले सावन महीने में नए आपूर्तिकर्ता के साथ खरीद समझौता किया है और इस समझौते के अनुसार आगामी फागुन 11 से पासपोर्ट सेवा शुरू होने के लिए नए पूर्वाधार तथा प्रणाली का निर्माण कार्य चल रहा है। विभाग ने बताया है कि नए आपूर्तिकर्ता और वर्तमान आपूर्तिकर्ता के बीच होने वाली संक्रमणकालीन स्थिति, सीमित संख्या में पासपोर्ट फॉर्म और सेवाग्राहियों की उच्च मांग जैसे कारणों से पासपोर्ट वितरण में कुछ समस्याएं आती रही हैं। विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान पासपोर्ट की कमी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और आगे की सूचना तक केवल अत्यंत आवश्यकता वाले सेवाग्राही को ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का विभाग ने आग्रह किया है। पासपोर्ट के विषय में अनधिकृत व्यक्तियों पर निर्भर न रहने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा हो सकने वाली ठगी से सावधान रहने के लिए विभाग ने ध्यान आकृष्ट किया है। भोजपुर और संखुआ सभा को जोड़ने वाले अरुण नदी के लमसुआ घाट पर बनने वाला पक्का पुल पिछले 15 वर्षों से अधूरा पड़ा है। विक्रम संवत 2067 साल में ठेकेदार के साथ समझौता हुआ था और 2070 साल तक पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन निर्माण कार्य के अधूरे रहने के कारण भोजपुर के उत्तरी क्षेत्र के नागरिकों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में आए भूकंप में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया है कि भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी हैं। तालिबान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान अमर ने बताया कि भूकंप की वजह से 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 320 से अधिक घायल हैं। ये भूकंप रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे स्थानीय समयानुसार मजार ए शरीफ क्षेत्र में आया। इस इलाके में करीब 5 लाख लोग रहते हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.3 रिक्टर मापी गई और इसकी गहराई 28 किलोमीटर रही। एजेंसी ने इसे ऑरेंज अलर्ट स्तर का बताया। इसका मतलब है कि इस आपदा में भारी जनहानि की आशंका है। तालिबान के प्रवक्ता हाजी जैद ने बताया कि बाल्ख प्रांत के शोलगरा जिले में कई लोग घायल हुए हैं। उनके मुताबिक ज्यादातर लोग ऊंची इमारतों से गिरने के कारण घायल हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दोलखा में हिमस्खलन की चपेट में 3 लोगों की हुई मौत, 4 लापता। सरकार ने जेनजेड प्रदर्शन के दौरान मारे गए 45 नागरिकों को किया शहीद घोषित। सबको महसूस होने के हिसाब से भ्रष्टाचार नियंत्रण और प्रभावकारी सेवा प्रवाह करने का सचिवों को प्रधानमंत्री कार्की ने किया निर्देश। सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए राष्ट्रपति पोडेल पहुंचे कतर की राजधानी दोहा। और अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 20 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।